आज हम सबकी सौभाग्य है जो बाप दादा के वरदानों में पलने वाले, बाप दादा के नूरे रतन, दादियों के अंग संग्रह, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, यज्ञ के रक्षक और हम सब के आगे आदर्श प्रस्तुत करने वाले वरिष्ठ भ्राताओं में से एक आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी हमारे बीच पधारे हैं। हम सब उनकी प्रप्रथम करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। भ्राता जी का जन्म अमृतसर पंजाब में हुआ और उन्होंने बीकॉम एलएलबी और सीए करते हुए डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के रूप में 14 साल तक नौकरी भी की और जब उनको ये जॉब करते हुए बाबा का ज्ञान मिला और बाबा की प्रेरणा से ही उन्होंने जॉब कंटिन्यू भी की और जहां जहां उन्होंने जॉब किया वहां ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाओं को अर्थात ज्ञान को फैलाते हुए वो फिर 1973 से पूर्ण रीति से वो सेक्रेटरी के रूप में ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो सेवा भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन भी तन मन धन संपूर्ण रीति से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पण भी किया। और हम जो प्यूरिटी जो जानते हैं और पढ़ते होंगे, प्यूरिटी एक इंग्लिश मैगजीन है ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जो निकलती है मंथली मैगजीन, उसके भ्राता जी एडिटर इन चीफ है और ऑथर एंड डायरेक्टर ऑफ करस्पॉन्डेंस कोर्सेज इन राजयोगा जो 8 भाषाओं में पब्लिश होते हैं। और इसके अलावा उन्होंने देश विदेशों में ईश्वरीय संदेश फैलाने के निमित्त यात्राएं भी की हैं और ओरिजिन ऑफ पीस एक कॉन्फ्रेंस जो नैरोबी में चली उनके उस कॉन्फ्रेंस के वो कीनोट स्पीकर भी रहे। तो आइए हम सब अभी आदरणीय वरिष्ठ भ्राता जी से अभी रूहानी खुशी व नशा इस विषय पर सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सब दूर दूर से पधारे हुए बहन भाइयों को विशेष तौर पे कर्नाटक से पधारे हुए बहन भाइयों को या कहें सहोदरा सहोदरियों को इस बाबा के टर्न में डायमंड हॉल में आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कितना अच्छा गीत भाइयों ने बजाया और बाबा ने बताया है कि सारी गीता गीतों के द्वारा ही बाबा ने सुनाई है। गीत के अंत में क्या था, ये रूहानी नशा। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, रूहानी नशा और रूहानी खुशी। ये तो हम जानते हैं कि नशा 2 प्रकार का होता है, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। जो जिस्मानी नशा होता है वो एक जन्म के लिए होता है, अगर किसी को हो, शरीर छूटा नशा भी टूटा। और जिस्मानी नशा एक बात, दो बात, तीन बात का होता है। किसी को धन का नशा होता है, किसी को अपने स्वास्थ्य का और सुंदरता का नशा होता है, किसी को अपने पद पोजीशन का नशा होता है, और वो नशे इकट्ठे सारे नहीं होते। एक होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो बाकी नहीं होते। और उस नशे को खोने का, उसके गुम होने का, समाप्त होने का चिंता और भय हर समय लगा रहता कि पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं ये जिस चीज का मैं नशा कर रहा हूं टूट जाए। अगर शरीर ही छूट जाए तो फिर, और शरीर छूटने का तो स्वास्थ्य का तो भरोसा नहीं है। इसलिए प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जन्म देते ही, जो बाबा ने हमको जन्म दिया, वो जिस्मानी जन्म दिया या रूहानी जन्म दिया, क्या ख्याल है आपका? रूहानी जन्म दिया। तो बाबा ने तो हमको जन्म ही रूहानी दिया, और बाबा स्वयं भी क्या है, उर्दू में कहा जाता है रूहानी रूह, रूहों का भी रूह अर्थात सुप्रीम सोल। अब हमारे पिता ही सुप्रीम सोल हैं, और हमें उन्होंने जो रूहानी जन्म दिया, उसकी जन्म घुट्टी जिसको कहा जाता है, पहला पहला हमारा जो नामकरण हुआ वो क्या था, कि तुम आत्मा हो, ठीक है, रूह हो, सोल हो। फिर शरीर में क्योंकि आए हुए हैं तो बाबा ने हमको कहा कि तुम कौन से सोल हो, ब्राह्मण सोल हो, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा तुमको जन्म दिया। अब जन्म भी हमारा रूहानी, पिता भी हमारा रूहानी, और बाबा कहते हैं समय भी रूहानी। हम सब ने सृष्टि चक्र को तो पहले कोर्स में ही पढ़ लिया, सृष्टि चक्र क्या है। अब आप सारे सृष्टि चक्र को सामने लाइए और सतयुग से लेकर शुरू करिए, और चलते चलते सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के अंत तक आ जाइए, चारों युग सामने लाइए और सोचिए कि क्या चारों युगों में हम किसी भी युग में रूहानी रहे हैं। क्या आंसर है आपका? क्या हम सतयुग में आत्मा स्मृति में रहे, और सतयुग से लेकर 5000 साल पूरे कलयुग के अंत तक हमें आत्मा का ज्ञान था, आत्मा स्मृति थी, तो रूहानी नशा क्या होगा? देवताओं को भी रूहानी नशा नहीं है। आप सोचो, ताली बजाओ कि आपको कौन सा नशा है। तो सारे साइकिल में ही रूह ही नहीं पता, रूह के पिता का नहीं पता, रूह के नशे का नहीं पता, तो कैसे होगा? इसलिए बाबा कहता है ये चाबी जो है, रूहानी नशे के खजाने की जो चाबी है, मैं संगम पर ही खोलता हूं। और संगम पर आप जितना रूहानी नशा रखना चाहें, चढ़ाना चाहें, चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक बात तो ये हमें पक्की है कि सारी दुनिया की 750 करोड़ आत्माओं में केवल और केवल हम थोड़े से रूहानी जन्म लिए हुए, दूसरा जन्म लिए हुए, थोड़े से ब्रह्मा बाबा की संतान ब्राह्मणों को ही रूहानी नशा चढ़ता है। और वो नशा कब तक रहता है? वो नशा कब तक रहता है? वो नशा, चढ़ता हुआ नशा जो बढ़ता जाए और चढ़ता जाए, चढ़ती कला का नशा हमें संगम युग तक रहता है। और संगम युग मैंने इस जो हमारा बहुत साधारण सा, सबसे ज्यादा दुख देने वाला पुराना शरीर है जब तक वो है, उसके बाद उस नशे की प्रालब्ध रहती है। और उस नशे की प्रालब्ध कितना समय रहती है? आधा कल्प रहती है, सारा सतयुग सारा त्रेता। तो प्रालब्ध नंबर वार है, चाहे हम सतयुग में सब सुखी हैं, सबकी आयु पूरी है, किसी को रोग शोक नहीं है, फिर भी नंबर वार तो है। जैसे कलयुग में हम दुखी थे तो सभी दुखी थे, नंबर वार तो थे। इसलिए इस नशे का कितना मूल्य है, अगर हम इस नशे को सदा कायम रखें तो ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और उसी अनुसार हमारी प्रारब्ध भी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जो बाबा हमें कहते हैं कि आपके चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान है, रोज मुरली सुनते हैं, योग है, देवी गुणों की धारणा है, और बाबा ने हमारी कमाई करवाने के लिए सेवा भी दी हुई है, नहीं तो बाबा चाहे तो सबकी बुद्धि को टच करके एक दिन में ही सबको परिचय दे सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं, दुनिया में भी होता है। माता पिता अपना धन बच्चे के सिर से वारी करके दान में करते हैं ताकि बच्चे का भाग्य बन जाए, और बाबा को तो प्रालब्ध भोगना भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सारे कल्प का हमारे, हम तो कह रहे हैं कि आधा कल्प, लेकिन वास्तव में सारे कल्प का हमारा जो भाग्य की रेखा है वो इस समय लिखी जाती है। तो आइए जरा विचार करें कि रूहानी नशा क्या चीज है, और जैसे कोई व्यक्ति ऐसी जगह चले जाए जो सब लोग नशा पी रहे हों और पला रहे हों, तो वो महफिल हो जाती है नशे वालों की। तो ये डायमंड हॉल क्या है इस समय? अब सब यहां क्या इकट्ठे, कहां इकट्ठे हुए हैं? जिसको कहा जाएगा इतना विशाल नशा पीने और पिलाने वालों का संगठन, हम यहां किस लिए आए हैं? कल क्या होने वाला है? कल क्या होने वाला है? हमको रूहानी नशे का एक और डोज मिलने वाला, इसीलिए तो आए हैं ना। तो इसलिए रूहानी नशा क्या होता है? बाबा कहते हैं कि और नशे में आपको टेम्परेरी खुशी होगी, आप दुख भूल जाओगे, और जब टेम्परेरी खुशी समाप्त होगी, नशा उतरेगा, तो और भी ज्यादा दुखी होंगे। जैसे कोई सपना देखता है, किसी के पास धन है, धन चले गया, फिर वैसा ही। स्वास्थ्य है, अब स्वास्थ्य आप देखते हैं, लोग आजकल के बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो क्या करते हैं? सुबह सुबह कुछ ना कुछ करते हैं स्वास्थ्य ठीक रहे। 3 महीने के बाद एक नजला होता है, फिर स्वास्थ्य वापस वहीं चले जाता है, फिर शुरू कर देते हैं। धन का भी ऐसा ही होता है, धन कमाते हैं कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, फिर शुरू कर देते हैं। इसी कोहलू के बैल की तरह इस चक्कर में चलते रहते हैं। अब बाबा कहते हैं मैंने आपको क्या दिया। अगर हम देखें संगम युग के ऊपर खड़े हो जाइए शुरू में, तो बाबा कहते हैं आपको मैंने कितनी अथॉरिटी दी हुई है। सबसे ज्यादा नशे का अगर एक शब्द देखें तो अथॉरिटी का नशा होता है। धनवान को धन की अथॉरिटी है, शिक्षा वाले को शिक्षा की अथॉरिटी है, किसी का पद है पोजीशन है उसकी अथॉरिटी है, कोई डॉक्टर है तो उसको अपने रोग को दूर करने के ज्ञान की अथॉरिटी है, कोई वकील है तो उसको फांसी से छुड़ाने की शक्ति है, वो अथॉरिटी है, उसका नशा उनको रहता है। हमको क्या अथॉरिटी है? अब आप देखिए, पहली बात कि संसार की जितनी भी अथॉरिटियां हैं, आप सोचिए इस संसार की जितनी भी अथॉरिटियां हैं उन सब की अथॉरिटी किसके पास है? पिता के पास, परम पिता के पास। हर बात में सुप्रीम कौन है? परम पिता। ज्ञान में ले लो, सुंदरता में ले लो, स्थिरता में ले लो, हर चीज में। तो जिसके पास सब अथॉरिटियों की अथॉरिटी है वो आपका पिता बन जाए तो आपके पास क्या हुआ? सारी अथॉरिटियां आ गई कि नहीं आ गई? इसलिए आपकी नजर कभी दुनिया की किसी अथॉरिटी में डूबेगी, एक तो वो दे की अथॉरिटी, एक टेम्परेरी अथॉरिटी, और एक आज दो चीज की अथॉरिटी, और हमारे पिता अथॉरिटियों की अथॉरिटी, उसकी हम संतान। जैसे कोई राजा का, अच्छे राजा का संतान हो, राजकुमार या राजकुमारी हो, उसको कितना नशा रहता है कि हम इतनी बड़ी सल्तनत के या जागीर के हम राजकुमार और राजकुमारी, कोई फिक्र ही नहीं। फिक्र होगा भी कोई तो पिताजी को होगा। इसलिए दुनिया की सभी, आज की दुनिया की सभी अथॉरिटियों की अथॉरिटी के हम बच्चे हैं, कितना बड़ा नशा है। एक थानेदार के बच्चे को भी नशा रहता है कि मेरा बाप थानेदार है। ठीक है, आगे चलिए। सब लोगों के अंदर आज तक जितने भी दुनिया में हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, विचारक हुए हैं, कोई भी हुए हैं, उन सब के अंदर एक प्रश्न रहता है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, पीछे क्या था, आगे क्या है, सबके अंदर। और अनेका अनेक मतें, अपने अपने लिमिटेड अथॉरिटी है, लिमिटेड बुद्धि है, अल्पज्ञ बुद्धि है, फिर भी अनेक मतें उन्होंने चलाई हुई हैं, फिर भी किसी के पास भी इस सृष्टि के आद मध्य और अंत की, तीनों लोकों की और तीनों कालों का ज्ञान किसी के पास है? है किसी के पास? तो बाबा के बच्चों के पास कहा जाता है नॉलेज इज पावर, ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, ज्ञान से गति हो जाती है। थोड़ा सा ज्ञान किसी को डॉक्टरी का हो जाए तो कितना बड़ा डॉक्टर बन जाता है। और यहां रोग आए ही नहीं, और एक जन्म नहीं अनेक जन्म, और रोग भी कौन सा, सभी को, ना वो पंछी हो, पशु हो, कोई भी हो, रोग मुक्त, ऐसी अथॉरिटी आद मध्य अंत के ज्ञान की बच्चों के पास ऐसे है जैसे ब्रह्मा कुमार और कुमारी बादाम खाते हैं। दुनिया वाले मूंगफली भी नहीं खा सकते, और ब्रह्मा कुमार कुमारी को बादाम ऐसे लगता है जैसे खेल है। तो कहने का भाव क्या, मक्खन खाते कह दो जो आपको पसंद आए। तो बाबा कहते हैं एक तो अथॉरिटियों की अथॉरिटी के बच्चे, और दूसरे रचयिता और रचना का सत्य ज्ञान आपके पास है तो कितनी नशे की बात है। और ये ज्ञान, इसका विनाश नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं और चीजों का विनाश हो जाता है, दुनिया में जो भी विद्याएं आप पढ़ते हैं वो एक जन्म के साथ हैं। मान लो किसी ने MA PhD करके शरीर छोड़ा, तो अगले जन्म में वो जब पैदा होगा बच्चा तो कौन सी क्लास में दाखिल होगा स्कूल में, पहली में या MA PhD में, तो कहां गई उसकी ज्ञान। इसलिए बाबा कहता है कि आप बच्चों को जो मैं ज्ञान देता हूं उसका विनाश नहीं है। एक तो कारण यह है कि हम रूहानी रूह के बच्चे रूह हैं, जब रूह का ही विनाश नहीं है तो रूह के अंदर गए हुए ज्ञान का कैसे विनाश होगा। और वो तो शरीरधारी हैं, शरीर के नाम से उनको डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, क्लिनिक खोलते हैं, तो शरीर गया, सब कुछ गया। इसलिए फिर बाबा कहते हैं मैंने आपको क्या वंडरफुल ज्ञान दिया है कि इस सृष्टि नाटक में हर अगला जन्म पिछले जन्म से गिरती कला का है, ठीक है, सतयुग से लेकर सतयुग का सेकंड जन्म भी ले लो, कलयुग के अंत तक गिरती कला का है। अगर किसी ने बहुत धन दान दे दिया, बहुत पुण्य कर दिया और उसका फल उसको अगले जन्म में मिलना भी है तो गिरती कला में मिलेगा। देखो कितनी वंडरफुल बात है। और हमको जो मिलेगा वो सतयुग में मिलेगा, ऐसी दुनिया में मिलेगा जो कि स्वर्ग कहलाती है। अच्छा आगे चलिए, दुनिया में धर्म और कर्म इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यहां भक्ति की बात तो है नहीं, आपने पूजा पाठ कर लिया कुछ मिलेगा नहीं, धर्म। अब सोचिए कि सबसे श्रेष्ठ धर्म किसका है, किसका है सबसे श्रेष्ठ धर्म? वह धर्म जो स्वयं परमात्मा स्थापित करते हैं, और आप जानते हैं एक नहीं तीन करते हैं, लेकिन चलो अपने ब्राह्मण धर्म को ही ले लो, तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धर्म जो सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी के द्वारा स्थापित किया हुआ वो कौन सा है, हमारा है या किसी और का है, बताइए। आपको बाबा ने ब्राह्मण धर्म में जन्म दिया जो स्वयं परमात्मा रचते हैं, और परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा डायरेक्ट रचते हैं, और दुनिया के जितने धर्म हैं वो यहीं से निकले हुए हैं। हर धर्म को देखोगे खुदा के बच्चे ने रचा, सन ऑफ गॉड। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं, जीसस क्राइस्ट गॉड था या सन ऑफ गॉड था? और भी जितने धर्म हैं, मैसेंजर, परमात्मा के पैगंबरों ने रचे, डायरेक्ट नहीं रचे। इसलिए उस धर्म के हैं हम जो स्वयं भगवान ने डायरेक्ट रचा, ओरिजिनल। तो हम डुप्लीकेट हैं या ओरिजिनल हैं, काउंटरफीट हैं या ओरिजिनल हैं? जो हमारा धर्म है वो सोल के अंदर गया है, और उस कारण से तीन धर्म चलते हैं हमारे, एक से ही। अच्छा आगे चलिए, कर्म। अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कर्म देखो, लोग कर्म करते हैं, वैज्ञानिक लोग विज्ञान के आविष्कार करते हैं, आजकल तो लोग वैज्ञानिक को ही मानते हैं, देखो हर काम कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कर्म, चलो दान पुण्य ले लो, भक्ति ले लो, कुछ भी ले लो, सर्वश्रेष्ठ कर्म वो कौन करना सिखाता और कौन करते हैं, और उसका युग कौन सा है, तीनों बातें जोड़ के बताइए। सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या संगम के अलावा हो सकते हैं? सारे कल्प में देख लीजिए, देवता भी कर्म करते हैं, लेकिन जिन कर्म से कमाई हो अनेक जन्मों की, और जो चढ़ती कला में ले जाए, वो कर्म केवल बाबा ब्राह्मणों के द्वारा ही कराते हैं और उसके यादगार में आज भी दुनिया के जितने नामधारी ब्राह्मण हैं उनकी जीवन चल रही है। जन्म के वक्त भी उनको बुलाते हैं, गृह प्रवेश में उनको बुलाते हैं, हर बात में मृत्यु तक भी उनको बुलाते हैं। क्यों? कि समझते हैं कि ब्राह्मणों ने सर्वश्रेष्ठ कर्म किए थे, यादगार। इसलिए धर्म भी हमारा सर्वश्रेष्ठ और कर्म भी हमारा सर्वश्रेष्ठ। उनको पता ही नहीं श्रेष्ठ कर्म होता क्या है, ना तो अपने लिए कोई कर सकता है ना दूसरे को करवा सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म की अथॉरिटी पावर मैं आपको देता हूं, सिवाय ब्राह्मणों के कोई करता नहीं। स्वयं भगवान के जो कर्म हैं वो भी बाबा ने हमको डेलीगेट कर रखे हैं कि बच्चों तुम करो। पतित पावन परमात्मा और उसके नेक्स्ट पतित पावन कौन? बाबा के बच्चे। अच्छा, अब प्रारब्ध पे आइए कि धर्म हो गया कर्म हो गया, सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध किसको मिलती है? दुनिया में सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध कौन प्राप्त करता है? बाबा कहता है मेरा लास्ट बच्चा भी, ढीले से ढीला बच्चा भी अधिकारी बन जाता है स्वर्ग में आने का। स्वर्ग में आना, इससे बड़ी प्रारब्ध क्या हो सकती है? उसके बाद के कितने धर्म स्थापक भी आ जाए, वैज्ञानिक भी आ जाए, कोई आ जाए, विचारक आ जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाए, एक्टर आ जाए, डायरेक्टर आ जाए, उसको वो प्रारब्ध नहीं मिल सकती। डबल क्राउन किंग, डबल क्राउन विश्व महाराजन, सारे विश्व की राजाई सिर्फ लक्ष्मी नारायण की नहीं है, सिर्फ राम सीता की नहीं है। यथा राजा प्रजा, जो भी सतयुग में आएगा वहां विश्व राज्य है, वहां डिवीजन है ही नहीं। तो आप सोचिए कि परिंदा भी वहां का जो होगा वो गोल्डन होगा। इसलिए बाबा कहते हैं प्रारब्ध भी आपकी सबसे ऊंची है। तो अगर हम गिने अपनी उपलब्धियों को कि रूहानी अर्थात आत्मिक स्थिति में रहने से पिता परमात्मा आपके हो गए, आपके पिता परमात्मा तब भूलेगा जब आप आत्मा को भूलोगे। तो रूहानी नशा, एक नशा नहीं कितने नशे। और अब आप आइए खुशी पर। खुशी एक वंडरफुल बात है जो आप सबको सोचनी चाहिए। वो क्या है कि आपने कभी खुशी और सुख में क्या फर्क होता है इस पर विचार किया कि खुशी और सुख में क्या फर्क है? दो शब्द हैं खुशी और सुख, क्या दोनों का एक अर्थ है? अगर शब्द दो हैं तो अर्थ भी दो होंगे। आप बताइए कि सतयुग के देवता सुखी हैं या खुश हैं या दोनों हैं? सोचिए, सतयुग के देवी देवता सुखी हैं या खुश हैं या दोनों हैं? क्या ख्याल है? आसान जवाब तो ये दोनों हैं जी, ठीक है ना, ताकि आगे कुछ बात ही ना बढ़े। लेकिन विचार करिए कि खुशी और सुख में क्या अंतर होता है। सुख से खुशी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर सुख वैसा ही रहे जैसा है, मान लीजिए आपको बहुत सुख मिल गया आज, तो क्या आपकी खुशी जैसी की वैसी रहेगी या बढ़ेगी? और अगर आपका सुख घटना शुरू हो जाए तो खुशी घटेगी या बढ़ेगी? आप जरा सोचो, सृष्टि चक्र को सामने लाओ और सोचो कि सतयुग में बाबा कहता है श्री कृष्ण की भी पूजा श्री नारायण से ज्यादा होती है, क्योंकि वन 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 से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। तो आपका आसान करने के लिए, आपका बोझ ना डालने के लिए, एक बात आप अनुभव में देखेंगे कि खुशी तब होती है जब कोई चीज बढ़े। आप किसी दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े का बिल आप देने लगते हैं, तो दुकानदार आपको एक तौलिया दे देता है कि जी हमारी स्कीम है कि जो भी इन दिनों में सामान लेगा उस एक तौलिया फ्री दिया जाएगा। अब आप बताओ आपको उस तौलिया की कितनी खुशी होती है, फ्री में मिल गया, अगर दो दे दे तो और भी अच्छा है। इसलिए बाबा कहता है जितने भाई लोग सर्विस करते हैं, जरा शुद्ध शब्द है सर्विस, नौकरी करते हैं या नौकर बनते हैं, और जब उनकी तनख्वाह बढ़ती है तब उनको खुशी होती है, जो तनख्वाह चल रही है उसकी खुशी होती है, वो कभी हुई होगी चाहे कितनी भी ज्यादा तनख्वाह हो, लेकिन अगर वो एक साल चलती रहे तो उसके बाद ऐसे लगता है मैं खीर नहीं खा रहा हूं, दाल खा रहा हूं। अगर उसकी तनख्वाह बढ़ेगी उस दिन उसको खुशी होगी, लड्डू भी बांटेगा। इसलिए खुशी इंक्रीमेंटल होती है, अर्थात बढ़ने से होती है। अब आ जाइए संगम पर। संगम युग पर आपकी खुशी बढ़ती है कि नहीं, उसका नाम क्या है, कौन सी कला का युग है, चढ़ती कला का। और किसी युग में आपकी चढ़ती कला होती है, तो खुशी बढ़ाने का डायमंड अवसर कब है, अब है। इसलिए बाबा कहता है कि रूहानी नशा, रूहानी नशा, और नशे छोड़ दो, रूहानी नशा केवल और केवल संगम युग पर होता है। और भी अगर आप सोचेंगे तो आप बड़ी लंबी लिस्ट बना सकते हैं। संगम युग पर आपका बेहद का परिवार होता है, इतना बड़ा परिवार। अब जैसे कल बसवराज भाई का अमृत उत्सव मनाया गया है, इतने बड़े अभी तो सारे परिवार वाले नहीं आए थे, फिर भी एक डायमंड हॉल में इतने सारे भाई बहनों के बीच में किसी का अमृत उत्सव मनाया जाए, क्या ये और जगह मनाया जा सकता, नहीं। तो बाबा कहते हैं वो भी ब्राह्मणों का, लोग एक ब्राह्मण बुलाते हैं, कभी कोई फंक्शन करना होता है, बच्चे का जन्मदिन है या मकान का ओपनिंग करना, तो एक ब्राह्मण बुलाते हैं। तो बाबा कहते हैं आपके इस संगम युग की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। अभी भी मुरली में आया था, जो स्वस्तिका बनाते हैं और श्री गणेश बनाते हैं, कोई भी ओपनिंग करते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, किसी भी ओपनिंग सेरेमनी में जो स्वस्तिका बनाते हैं उसका अर्थ क्या है, कि वहां वो तो बेचारे भक्ति में बना लेते हैं, हैं? साउथ इंडिया में रंगोली रोज बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ यही है कि याद रखो कि संगम पर बाबा ने जो उद्घाटन किया और कराया था उसी के एक निमित्त यादगार ये सब उद्घाटन हो रहे हैं। और गणेश का क्या अर्थ होता है, बुद्धिमान, के हर बात को देवी देवता कहा जाता है, पहले सोचो फिर करो तो सुखी रहोगे। बाबा ने हमको कहा पहले सोचो फिर करो, हर कर्म के लिए नहीं है, हर जन्म के लिए भी नहीं है, ये हर युग के लिए भी नहीं है, केवल संगम में सोच लिया उसके बाद अच्छा ही अच्छा है, कल्याणकारी कल्याणकारी। इसलिए इस युग का क्या नाम है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो यहां पर बाबा कहता है तुम्हारी चढ़ती कला है ही है। कई ब्राह्मण कभी देखते हैं थोड़ी अवस्था नीचे हो गई, उदासी आ गई, गलती तो अपनी होती है कि रूहानी नशे की बजाय जिस्मानी नशे का स्विच ऑन कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में सोचते हैं ये तो चला गया, इसके तो पीछे दुख आ गया, क्योंकि इस कलयुग दुनिया में तो सुख है ही नहीं। बाबा ने हमें एक बार ही बता दिया कि जैसे सतयुगी दुनिया में दुख नहीं है, ये तो सारी दुनिया मानती है, किसी से भी पूछ लो कि स्वर्ग में दुख नहीं हो सकता, कोई कहेगा स्वर्ग में दुख हो सकता, स्वर्ग में सतयुग में त्रेता में क्या स्वच्छता अभियान चलाएंगे आप, हैं? नहीं, क्योंकि वहां ये गड़बड़ होती नहीं। ये सब मानते हैं कि स्वर्ग मैंने ना रोग ना शोक ना दुख ना शांति ना चिंता ना काल मृत्यु कुछ नहीं होता, ये सब मानते हैं। लेकिन बुद्धि का फेर देखो, माया का चकमा देखो, ये नहीं मानते कि कलयुग में सुख नहीं हो सकता। ये मानते हैं कि सतयुग में दुख नहीं हो सकता, लेकिन ये नहीं मानते कि कलयुग में सुख नहीं हो सकता। बाबा कहता है, तुम त्रिकालदर्शी बच्चों को मैं ये बुद्धि में डालता हूं, पक्की एक बार ही समझ लो कि कलयुग में सुख नहीं हो सकता, और हम संगम युग पर हैं। इतनी बात कोई समझ ले कि कलयुग में सुख, जब युग ही दुख का है तो सुख कहां से आया। वो जो धोखा है वो हमको रूहानी नशे से बदलकर कभी कभी जिस्मानी नशे का, जिस्मानी खुशी का बटन दबवा देता है, फिर अंधेरा हो जाता है। बाद में सोचते हैं क्योंकि मुरलियां तो चलती हैं, ज्ञान का विनाश नहीं है, इसलिए फिर रोशनी में आ जाते, पर ये जग मग जग बुझ ठीक तो नहीं है ना। दिवाली ऐसी तो नहीं होती ना, दिवाली में तो कोई दीपक जगे बुझे उसको जाके चेंज करते हैं कि भाई ये क्या सारा हमारा दिवाली की रौनक को खत्म कर रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, संगम युग, ब्राह्मण जन्म, बाबा का साथ, इतना बड़ा सेवा का मौका अपनी किस्मत बनाने का, और इतनी अथॉरिटियां जो बाबा ने हमको दी हुई हैं, अगर उनका केवल सिमरन भी कर लोगे तो क्या बात है। आपको पता लगेगा दीन दुनिया कहाँ है, कहाँ पर बम पड़ गया, किसी की गर्दन कट गई, आपने क्या लेना, ये तो होगा ही होगा। नशे वाले व्यक्ति को तो शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, और ये तो शास्त्रों में कहा हुआ है कि गोप गोपियों की को शुद्ध बुद्धि नहीं थी। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा कहते हैं मैं रोज तुमको नशा चढ़ाता हूं। जैसे पेट्रोमैक्स लैंप होता है ना, थोड़ी देर में उसकी रोशनी कम हो जाती, फिर उसमें पंप करते हैं, फिर वो तेज हो जाती है। हर चीज में ऐसे होता है। आप पौधे को पानी दो, फिर अगले दिन थोड़ा सा फिर देते हैं कि हरा भरा रहे। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, रोज की मुरली मैंने तुम्हारे लिए इसलिए चलाई हुई है कि डांस करते रहो, अपना नशा और खुशी कायम रखो और बढ़ाओ। तो हम यहां तो आज इसलिए आए हैं कि डायरेक्ट, क्योंकि बाबा कहता मैं तो चाहता हूं मेरे बच्चे सदा ही मेरे पास रहें, मैं ही उनकी पालना करूं, मैं इनको भोजन खिलाऊं, लेकिन नहीं हो सकता तो नेक्स्ट बेस्ट क्या है कि बीच बीच में आ जाए करे रिफ्रेश होने। तो वो लकी हैं, बाबा हमेशा कहता है ये भी एक बड़ा लक है कि हम शरीर में हैं, संगम युग पर हैं और बाबा से मिलने के लिए आए हैं। इसलिए जोरदार ताली एक बारी बजा दो, वैसे तो साउंड की जरूरत नहीं। और ओम शांति। अब बाबा कहता है कि तुमको साइलेंस में रहना है ना, रूहानी नशा तो साइलेंस में ही चढ़ता है। नशे वाला भी क्या करता है, नशा पीकर आंखें बंद कर लेता है, वाह। तो इसलिए अब हम साइलेंस में बैठते हैं और अपनी सब उपलब्धियों को, अपनी सब निधियों को स्मृति में ला करके बाबा को याद करते हैं। बाबा कहता है कि तुम इतने लकी हो, दुनिया वाले भगवान को याद करते, और मैं कहता हूं वाह बच्चे वाह, वाह संगम युग वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। हम यहां नारा नहीं लगाएंगे, लेकिन दिल में हम ये करेंगे और शांति में बैठेंगे। ओम शांति।